श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
कैसा कठिन रास्ता है। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर की दया से उसके वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम जकरयाह के द्वारा देखे गए दर्शनों पर चिंतन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके पवित्र और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस घड़ी जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हर एक श्रोता भाई बहन आपके वचन के ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त कर सके और इतना ही नहीं उनके जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए, सत्यता को जानने पाए और वे अपने जीवन में स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय निराश, परेशान और चिंता में हैं, तनाव में हैं, दबाव में हैं, प्रभु जी आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उनके जीवन को स्पर्श करें ताकि वे भी आपकी निकटता में आने पाएं। धन्यवाद प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब जकरयाह की पुस्तक उसके छठवें अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सब देखेंगे कि जो भी दर्शन जकरयाह ने देखे हैं वे बड़े ही अद्भुत हैं। जी हां, अब हम जकरयाह को दिए गए 10 दर्शनों में से अंतिम दर्शन अर्थात 4 रथों का दर्शन देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि को जानने के लिए हम इन 10 दर्शनों को देखते हैं। आइए आप मेरे साथ देखिए। पहला है मेहदी में घुड़सवार, दूसरा 4 सिंह और तीसरा 4 लोहार, चौथा नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष, पांचवा यहोशू और शैतान, छठवा शाख और 7 आंख वाला पत्थर, सातवा दीपदान और जैतून के 2 वृक्ष, आठवां उड़ता हुआ पत्र, नौवा एपा में सवार एक स्त्री और अब 10वां है 4 रथ। मैं फिर कहता हूं कि कुछ टीकाकार केवल 8 दर्शन गिनते हैं, परंतु मैं यहां 10 दर्शन देखता हूं जिसे मैं आपके साथ बांट रहा हूं। मेरे मित्रों, बाइबल एक क्रांतिकारी अर्थात शिक्षा देने वाली पुस्तक है और यही कारण है कि कुछ लोग बाइबल को पसंद नहीं करते हैं। कहा जाता है कि जॉन कैल्विन ने पूंजीवाद बाइबल से सीखा था और मेरे विचार में ऐसा हुआ भी, परंतु मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बाइबल में धनवानों की अपेक्षा गरीबों का पक्ष अधिक लिया गया है। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। मेरे प्रियो, वह केवल पैसा जमा करने के लिए धन संचय के विरुद्ध में कह रहा है। आगे पद 4 में वह कहता है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लौने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। मेरे प्रियो, जकर्या ने स्वर्गदूत से पूछा कि वे एपा को कहां लिए जाती हैं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, शिनार देश में लिए जाती हैं कि वहां उनके लिए एक भवन बनाए। शिनार देश कहां है? यह बेबीलोन है। परमेश्वर उस दुष्टता को वहीं भेज देगा जहां से वह आई थी। उसका अंतिम दिन विनाश के बारे में प्रेरित यूहन्ना ने दर्शन में देखा था, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1-5 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बेबीलोन, गिर गया है वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है, क्योंकि उसके वे विचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ वे विचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसके विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। मेरे मित्रों, आज क्या परमेश्वर शेयर बाजार में है या किसी बड़े व्यापार केंद्र में है? क्या परमेश्वर किसी मजदूर संघ में है? जिस किसी में बुद्धि है, क्या वह जानता है कि परमेश्वर इसके बाहर है और उन्हें पृथ्वी पर से मिटा देना चाहता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसके 21-24 पद में लिखा है, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उधम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दुल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यद वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। मेरे प्रियो, इस दुष्ट तंत्र के हट जाने पर इसराइल सच में एक पवित्र देश होगा, और जब संपूर्ण पृथ्वी से दुष्टता का अंत होगा, तब पृथ्वी पर परमेश्वर का राज होगा। यह कैसा महिमामय भविष्य होगा, क्योंकि आप और मैं इस दुष्ट युग में अभी वास करते हैं। तो ऐसी पृष्ठभूमि के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो अंतिम दर्शन है, 4 रथों का दर्शन, जकरिया की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा। मेरे प्रियो, इससे स्पष्ट है कि वह सो नहीं रहा था, यह उसका स्वप्न नहीं है। कहता है 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। अधिकांश टीकाकारों के अनुसार ये पर्वत सियोन पर्वत और जैतून का पर्वत है और ये 4 रथ किद्रोन की घाटी में हैं। 4 रथ चले आते हैं अर्थात उनमें घोड़े बंधे थे और रथ चालक भी थे। ये 4 रथ संसार के 4 महान राज्यों का प्रतीक थे जिन्हें दानियल ने भी दर्शन में देखा था। वे सब अन्य जाति राज्य थे और परमेश्वर के दंड के पात्र थे। दानियल का वह दर्शन पूरा हो गया है, तथापि मैं इन 4 रथों को यहोन्ना के दर्शन से जोड़ना चाहता हूं जो अभी भावी घटना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय वास्तव में महाक्लेश से संबंधित यहोन्ना का दर्शन है जिसमें 4 घुड़सवार हैं। यहोन्ना के इन 4 घुड़सवारों में और जकरिया के 4 रथों के दर्शन में असामान्य समानता है। 5 में हमने इसराइल से संबंधित दर्शन देखा जिसमें दंड की चर्चा है, परंतु 6 में परमेश्वर की प्रजा को सताने वाले राष्ट्रों के लिए दंड की भविष्यवाणी है। यह पूर्वकालिक दंड ही नहीं, उत्तरकालीन दंड भी है जो महाक्लेश के युग में होगा। लिखा है और वे पहाड़ पीतल के हैं। पीतल सभ्यता के आरंभ ही से है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में पीतल परमेश्वर के दंड का प्रतीक रहा है। मिलाप वाले तंबू में पीतल के 2 सामान थे जो पाप के दंड को प्रकट करते थे, पीतल की वेदी और पीतल की हौद। ये दोनों मंदिर के बाहरी प्रांगण में थे और इसराइल के पाप का प्रतीक थे। अतः ये पहाड़ पीतल के हैं और निश्चय ही परमेश्वर के दंड का वर्णन करते हैं। परमेश्वर का दंड किद्रोन की घाटी से निकलेगा और ये 4 रथ 4 दंड के प्रतीक हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं जकरिया की पुस्तक 6 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। ध्यान दीजिए, इन घोड़ों के रंगों का महत्व है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय में घोड़ों का भी यही रंग है। मेरे विचार में जकरिया का 4 रथ देखना और यहोन्ना का 4 घुड़सवार देखना संयोग नहीं है। जी हाँ, वे एक ही भावी घटना का चित्रण है। यहोन्ना के दर्शन में लाल घोड़ा युद्ध का प्रतीक है, काला घोड़ा अकाल का और पीला घोड़ा मृत्यु का। यह सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दंड है। तब सफेद घोड़ा किसका प्रतीक है? जकरिया के दर्शन में भी सफेद घोड़ा है, यह विजय का प्रतीक है। यहोन्ना के दर्शन में सफेद घोड़े के तुरंत बाद लाल घोड़ा आता है, यह युद्ध का घोड़ा है। मेरे विचार में पहला घुड़सवार ख्रिस्त विरोधी है जो संसार में झूठी शांति लाएगा। उसके बाद संसार में युद्ध होगा जिसका प्रतीक लाल घोड़ा है। जी हाँ, हमने अभी तक विश्व युद्ध नहीं देखा है। मनुष्य लड़ाकू प्राणी है। हम महाक्लेश को समझ नहीं पा रहे हैं कि वह कैसा भयानक समय होगा। यह युद्ध का लाल घोड़ा है। यहां पर लिखा है चितकबरे और बादामी घोड़े। ये प्रकाशित वाक्य के पीले घोड़े के तुल्य हैं। यह दर्शन परमेश्वर ने अपनी प्रजा के उत्साह वर्धन के लिए जकर्या को दिखाया था। इसका अर्थ था कि परमेश्वर ने उन्हें तो दंड दिया है, परंतु वह अन्य जाति राज्यों को भी दंड देगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं जकर्या 6 अध्याय उसके 4 और 5 पद में। यहां पर लिखा हुआ है, दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु हैं जो सारे पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। ये आकाश की चारों वायु हैं। डेविड बेरन के अनुसार ये चार वायु स्वर्ग दूत हैं या स्वर्ग की शक्तियां हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं और अति सामर्थी हैं। वे वायु की रफ्तार से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में अन्य जाति राष्ट्रों पर परमेश्वर का दंड लाने का उत्तरदायित्व इन स्वर्गदूतों का है। मेरे प्रियो, अब हम उनका वर्णन को देखते हैं कि उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है। जकर्या 6 अध्याय उसके 6 और 7 पद में आगे लिखा है, जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। बदामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करें। अतः दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। मेरे प्रियो, काले और सफेद घोड़ों वाले रथ उत्तर दिशा में जाते हैं और चितकबरे घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। जकर्या 6 अध्याय के 8 पद में आगे कहता है, तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठंडा किया है। देखिए, ये रथ न तो पश्चिम दिशा में है क्योंकि वहां भूमध्य सागर है और न ही पूर्व दिशा में गए जहां रेगिस्तान है। वे उत्तर और दक्षिण दिशा में गए हैं। इसराइल से कहीं भी जाने के ये दो ही मार्ग थे। कहने का अर्थ है कि वे इसराइल से निकलकर संपूर्ण पृथ्वी पर गए। मेरे प्रियो, काले और श्वेत घोड़ों के रथ उत्तर दिशा में गए, अर्थात महाक्लेश का दंड रूस के आगमन से आरंभ होगा। गोग और मगोग जो उत्तर दिशा में हैं, दंड दक्षिण में मिस्र की ओर भी जाएगा। यहां घोड़े मुख्य विषय नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में महाक्लेश की घटनाओं का क्रम दिया गया है। श्वेत घोड़ा विजय द्वारा पृथ्वी पर झूठी शांति लाएगा। संसार सोचेगा कि वह प्रभु राज का आगमन है, जबकि वह वास्तव में महाक्लेश का आगमन होगा। श्वेत घोड़े के बाद लाल घोड़ा है, जिसका अर्थ है विश्व युद्ध। उसके बाद काला घोड़ा है जो अकाल का प्रतीक है। युद्ध के बाद तो अकाल पड़ता ही है और महामारी एवं मृत्यु का आगमन भी होता है। यह बादामी घोड़े का अर्थ है। यहां रथों के क्रम का इतना महत्व नहीं है जितना कि परमेश्वर द्वारा सब जातियों को दंड दिए जाने का महत्व है। ये चार रथ परमेश्वर के दंड का प्रतीक है। यह सब महाक्लेश के युग में होगा। इस प्रकार जकर्या को दिए गए 10 दर्शन का अंत होता है। और मैं आशा करता हूं और यह विश्वास भी करता हूं कि आपने इन 10 दर्शनों के द्वारा निश्चय ही अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को प्राप्त किया है और इस बात को भी जान लिया है कि परमेश्वर दंड देता है। परमेश्वर दंड देगा। हमारे पापों के लिए वह न्याय करेगा। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और सहायता प्रदान करे कि आप परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताने पाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मुझको चाहिए।